नमस्कार जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिकी चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान टीम ने दावा कर दिया है कि ईरान इस बार के चुनाव में हस्तक्षेप करने वाला है। उनके खरीदे हुए हैकर्स अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर लेंगे। असल में कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसी में ईरानी हैकर्स का जिक्र था, जिसके बाद ट्रंप की प्रचार टीम ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दावा हुआ है कि ईरान की वर्तमान सरकार ने न सिर्फ कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए हैं, बल्कि उनकी तरफ से उन्हें बांट भी दिया गया है। अब ये बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप का इतिहास पुराना है। कौन भूल सकता है कि पिछले चुनाव के दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप लगा था कि उसने डोनाल्ड ट्रंप की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। उसने अमेरिका के लोगों का ही ज़रूरी डेटा ट्रंप की टीम को उपलब्ध करवाया था। अब स्थिति बदल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप फिर सत्ता में आना चाहते हैं और उनके विरोधी उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक विरोधी ईरान भी है, क्योंकि उसके ट्रंप के साथ रिश्ते समय के साथ सिर्फ बिगड़ते रहे हैं। असल में जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, उनकी तरफ से ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। उसी बात से मुस्लिम देश नाराज चल रहा था और अब माना जा रहा है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप को वापस लौटने नहीं दे सकता। वैसे बड़ी बात यह है कि जिस माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट को लेकर सारा बवाल चल रहा है, उस कंपनी ने ही अपने दावे में ट्रंप का जिक्र तक नहीं किया है। उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि सीक्रेट दस्तावेज और संवाद लीक हुए हैं, लेकिन ट्रंप की टीम ने दावा किया है कि उनके अभियान को ही हैक करने की साजिश रची गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस नवंबर में ही अमेरिकी चुनाव होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेट्स के कमला हैरिस से रहने वाला है। पहले बाइडेन चुनावी रेस में खड़े थे, लेकिन ऐन वक्त पर दबाव और विवाद के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बांग्लादेश में घटनाक्रम तेजी से बदला है। शेख हसीना ने देश छोड़ तो दिया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वहां अंतरिम सरकार बन गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी है। हालांकि अब कई प्रदर्शनकारी काम पर लौट रहे हैं। 19 वर्षीय ओभिक एक हफ्ते पहले तक शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था, लेकिन अब वो ट्रैफिक कर्मी का काम देख रहा है। ओभिक ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, सरकार से तो छुटकारा मिल गया, अब जिम्मेदारी उठानी होगी। मेरे पैर में चोट लगी है, लेकिन लोगों की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। आर्किटेक्चर के दूसरे वर्ष के छात्र ओभिक का कहना है कि जब हम धरने पर थे तो लाठीचार्ज और आंसू गैस का सामना करने के कारण दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। ओभिक का कहना है कि वो सुबह 11 बजे से ट्रैफिक ड्यूटी पर हैं और बूंदाबांदी के बावजूद शाम तक अपने पद पर था। सरकार का साथ देने और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के कारण लोगों के गुस्से का सामना कर रही पुलिस अभी भी काम पर नहीं आ रही है। शासन बदलते ही ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने यातायात का प्रबंधन किया। अंतरिम सरकार के शपथ लेने के बाद ढाका की दीवारों पर लिखे सारे नारे मिटा दिए गए हैं। मेट्रो के खंभों पर खूनी हसीना हम जीत गए, हसीना तुम कहाँ गायब हो गई हो जैसे नारे लिखे थे, लेकिन इस पर स्प्रे पेंट किया गया है। प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को भी नहीं बख्शा गया। ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ठीक बाहर उनकी मूर्ति टुकड़े टुकड़े में बिखरी पड़ी है। हसीना के समर्थकों का कहना है कि देश भर में मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया है, जिनमें कुछ ढाका में भी हैं। एक अधिकारी ने कहा, वो यानी शेख हसीना अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए हर मौके पर उनका नाम लेती थी, इसलिए उनके खिलाफ दबा हुआ गुस्सा था जिसने भीड़ को ऐसी चीज़ें करने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कहना है कि छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने ऐसे कृत्यों को अंजाम देने के लिए किया था। अरसुदा नाम के छात्र ने कहा, हम बंगबंधु का भी सम्मान करते हैं, लेकिन शेख हसीना की हरकतों से लोग नाराज़ हो गए, ये उस गुस्से की एक प्रतिक्रिया थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएँ जनसत्ता.com पर। नमस्कार।